الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقمه العالمون لا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صلوات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ نثار بانو بنت علی حسن مرحومہ خورشید فاطمہ بنت علی متقی جعفری رحم اللہ من قرع الفاتح صلی علی محمد و آل محمد سورہ مبارکہ التکاثر کی آٹھویں آیت پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ مخلوقات کا عنوان عطا کیا پھر اعلیٰ اور اشرف مخلوقات میں بھی اس نے ہمیں ایسے دروازے سے وابستہ کیا جو دروازہ اشرف الشرفاء اور اجلا ترین مقام اور حیثیت و منزلت رکھنے والا دروازہ ہے۔ یوں تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز، عبادت گزار اور منعم کا شکریہ کرنے والی نظر آتی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے اللہ کی جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہو۔ البتہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی فطرت پہ ہی خلق کیا۔ اگر ہم بھی فطرت پر ہی باقی رہیں تو کبھی بھی اس کے دروازے سے دور نہیں ہوں گے۔ انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ دو مخلوقات با اختیار ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سرتابی، سرپیچی اور بغاوت اور انعاد کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ شاید یہی اس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ جب با اختیار ہے اور اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو پھر ان کی فضیلت دیگر مخلوقات سے زیادہ بلند نظر آتی ہے، زیادہ بافضیلت نظر آتے ہیں۔ میں اگر آج کے اس پہلے بیان میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایام شہادت کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہیں، یوں کہوں کہ अल्लाह ने हम सब को मसूल करार दिया है, हम सब जिम्मेदार हैं। मसूल यानी जिससे सवाल किया जाए, और जिम्मेदार ही वो होता है कि जिससे सवाल किया जाता है। अहदीस, रिवायात, मुशाहिदात अपनी जगह, मगर अक्ल का तकाजा भी है कि हमें किसी को जवाब देना होगा और हम भी किसी से जवाब तलब कर सकते हैं। हम इस माशरे में एक तावुन के उनवान से, हमाहंगी के उनवान से, एक दूसरे से लेन देन के उनवान से करार दिए गए हैं। आप मुझसे तावुन करते हैं, मैं आपसे तावुन करता हूं, हम दोनों फिर किसी और से तावुन करते हैं, और ये जो तावुन का सिलसिला है वो जो इंसान की जिंदगी में एक तावनु अलल बिर व तक्वा वला तावनु अलल इस्म वल उदवान, हमें बुराइयों में एक दूसरे के साथ हमाहंगी की इजाजत नहीं है, मगर हमें अच्छाइयों में एक दूसरे के साथ हमाहंगी का हुक्म दिया गया है। हम मसूल हैं, तवज्जो चाहूंगा, हम मसूल हैं, हमसे सवाल होना है। अब किसका, किससे क्या सवाल होना है, इसमें भी हमारी रहनुमाई है, हमें रहनुमाई दी गई है, हमारी रहनुमाई की गई है। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत में चार चीजों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, अन सिन्ने का, अन शबाबे का, अन माले का, अन हुब्बुना अहलुल बैत। ये चार चीजों के बारे में तुमसे कयामत में सवाल होना है, पूछा जाएगा तुमने अपना सिन्नो साल कहां गुजारा, ये जवानी कहां गुजारी, ये सिन तुमने कहां गुजारा, अन शबाबे का, ये जवानी तुमने कहां गुजारी। खास तौर पर पूरी जिंदगी का सवाल एक तरफ और जवानी के सालों का सवाल एक तरफ। मैं अगर इसी मरहले पर यह कहता जाऊं कि इंसान की मुकम्मल जिंदगी अगर 100 साल की भी है तो वो जो ऐन शबाब का दौर है वो चंद साल एक जानेब और सारी जिंदगी की जिम्मेदारियां एक जानेब। जवान, जवान खुद नाम लफ्ज, ये जो लफ्ज है ना जवान, ये खुद पुके बता रहा है कि ये जिम्मेदार है। आप ये लफ्ज पुकार कर बता रहा है कि ये जिम्मेदार है। आज ना तालीमी इदारे बगैर जवानों के चल सकते हैं, ना उम्र मुमलिकत बगैर जवानों के सकता है, ना जदीद उलूम में जो दौड़ है उसमें बगैर जवानों के उस दौड़ का कोई उनवान बन सकता है, वो दौड़ ही मुनक़िद नहीं होगी जब तक कि जवान ना हो। लिहाजा अच्छा ये भी तय कर लिया जाए कि जवानी दीवानी नहीं है, जज्बातियत के गलबे को जवानी नहीं कहा जाता, बल्कि मारिफत की महकूमियत को जवानी कहा जाता है। जब इंसान की जवानी पर उसकी मारिफत हाकिम हो जाए तो फिर जवान फिर ऐसा बनकर नजर आता है कि ला फता इल्ला अली, कोई जवान ही नहीं है तारीख बशरियत में सिवाय अली के, ला फता इल्ला अली। और फिर जब ऐसे जवान के हाथ में असलहा आ जाएगा तो फिर ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। इसलिए कि अगर जवानी की तवानाइयां बगैर मारिफत के इस्तेमाल में आए, जुमला हदिया कर रहा हूं इंतहाई मोहतरम सुनने और देखने वाले लिए, कि जवानी की तवानाइयां अगर बगैर मारिफत के इस्तेमाल में आए तो वो दहशतगर्दी बन जाती है, वो खिदमत समाज नहीं होता। मारिफत के इस्तेमाल किया जाए तो वो फजूल खर्ची होगी, सखावत नहीं होगी। अगर बाजू की ताकत बगैर मारिफत के इस्तेमाल किया जाए तो अजीजान गिरामी फसाद जरूर होगा, इस्लाह माशरा नहीं होगा। और अगर इल्म बगैर मारिफत के इस्तेमाल किया जाए तो फसाद का जरिया बनेगा, शहरों की आबादी का नहीं बनेगा। हमसे सवाल होना है भाई, हमारी सलाहियतों का सवाल होना है, हमारी तनाइयों का सवाल होना है, हमसे पूछा जाना है। पहले तो ये तय कर लें, पूछना पूछा जाएगा इसी दुनिया में पूछा जाएगा या नहीं, इस दुनिया की पूछकछ को तो शायद हम इस दुनिया की रंगीनियों में रंग दें। दिक्कत चाहूंगा, हमसे कोई पूछ रहा है इसी दुनिया में तो हम इस दुनिया के तकाजों के मुताबिक उस पूछकछ को किसी और मरहले में दाखिल करें और हमने उसका जवाब सही न दिया हो तब भी हम गुजारा कर लें। लेकिन एक ऐसी जगह भी है कि जहां पर तुम गलत सवाल देने जवाब गलत जवाब देने नहीं पाओगे। देखना चाहूंगा, तुम एक ऐसे मैदान में ले जाके खड़े कर दिए जाओगे, तुम्हें ले जाके खड़ा किया जाएगा कि जिस मैदान में जाकर तुम गलत जवाब दे नहीं पाओगे, इसलिए कि जैसे ही तुम गलत जवाब देना चाहोगे तो तुम्हारा हाथ पुकार के कहेगा झूठ बोल रहा है, तुम्हारा कान पुकार के कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारे पैर पुकार के कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, और खुद वो जबान पुकार के कहेगी कि ये झूठ बोला जा रहा है, मुझसे जो कहा जा रहा है वो हकीकत नहीं है। लिहाजा एक ऐसी जमीन भी है, एक ऐसा माहौल भी होगा और एक ऐसी जगह होगी कि जहां सवाल होना है, पूछा जाना है। सवालत तो यकीनन निस्वे इल्म हुआ करते हैं, खुद सवाल के बारे में हदीस मुबारका से इस्तेफादा है, अस्वाल और निस्व इल्म, खुद सवाल करने वाला जब सवाल करता है तो उसका सवाल पुकार के बता रहा होता है कि ये कितना जानने वाला है। बाज़ औक़ात तो आधा जवाब खुद सवाल के अंदर होता है, लिहाजा हर शख्स इस काबिल भी नहीं है कि वो सवाल कर सके, सवाल करने की भी एक काबिलियत है। और फिर सवाल दो तरह से किए जाते हैं, मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है उसमें सवाल से मुतालिक गुफ्तगू है, इसलिए अपने तमीदी बयान से गुजर रहा हूं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, यह आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, फिर उस दिन उनसे बिजरूर पूछा जाएगा नेमते उज़्मा के बारे में। तो पूछगछ तो होनी है, सवाल तो होना है। अब बाज़ औक़ात सवाल होता है किसी को शर्मिंदा करने के लिए, इंतहाई मज़मूम है, इंतहाई नामुनासिब है, ऐसा शख्स किसी को शर्मिंदा करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी के की हैसियत को मौरिद सवाल बनाने के लिए जब कोई सवाल करता है तो ऐसे शख्स के लिए इसे गुनाहे कबीरा में करार दिया गया है। इसलिए कि किसी भी इंसान की तौहीन रवा नहीं है, और अगर वो इंसान मोमिन हो तो उस मोमिन की तकलीफ, मोमिन का दिल दुखाना काबतुल्लाह को गिराने के मुतादिफ है। यानी किसी मोमिन को परेशान करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह के घर को वो डरा रहा हो, गिरा रहा हो। तो सवाल इसलिए नहीं किया जाएगा कि किसी को शर्मिंदा किया जाए, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, वो परेशान हो जाए और वो हल्का हो जाए, वो किसी माशरे के अंदर और किसी जगह पर वो मसलन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, नहीं। फरमाते हैं सल तफक्कुहन, सवाल करो समझने के लिए, हमेशा सवाल होना चाहिए समझने के लिए। ये मेरी और आपकी बात हो रही है, हम किसी से सवाल करें समझने के लिए सवाल करें, मगर जब अल्लाह हमसे समझाने के लिए सवाल करेगा कि तुम किस जगह खड़े हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने क्या किया है, ये हमें तवज्जो दिलाने के लिए सवाल किया जाएगा। अजीजाने गिरामी, बाबे सवाल और जवाब में मैं हूं चाह रहा हूं कि कुछ देर तक और रुकूं, हर एक से सवाल भी ना करें, काबिलियत और अहलियत देखकर बात होनी चाहिए। कम से कम मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं जिससे सवाल कर रहा हूं वो इस सवाल का जवाब देने के काबिल भी है या नहीं, वरना मेरा सवाल भी जाया जाएगा और मुकाबिल को शर्मिंदा करके एक गुनाह में भी मुब्तला हो जाऊंगा। हर एक को उस्ताद भी नहीं बनाया जा सकता, हर एक उस्ताद होता भी नहीं है। मैं तो यूं कह दूं कि आज माशरे में जिस चीज का फुकदान है वो उस्ताद ही तो है। जो नापैद नजर आ रहे हैं, जो मफकूद नजर आ रहे हैं, जो ढूंढने से नहीं मिल रहे, वो माशरे में उस्ताद ही तो हैं। सिलेबस को मुकम्मल करवाने वाला, निसाब को था मुकम्मल कर देने वाला, पेपर लेने वाला, बहरहाल उनका भी मकाम है। मैं बेअदबी की हरगिज़ इस मेंबर से तालीम नहीं दूंगा, लेकिन उस्ताद तालीम देने वाले को ही नहीं कहते, बल्कि उस्ताद उसे कहते हैं जो तालीम के साथ तरबियत भी देता हो। जिस माशरे में तालीम का तो दौड़ और मुकाबला शदीद नजर आए और तरबियत का फुकदान नजर आए, तो फिर वहां बहरहाल होंगे, मगर उस्ताद का उनवान ढूंढने से मिलेगा, और हमें जो जो अहले दिल हैं वो उस्ताद को ढूंढ रहे होते हैं। سوال اس سے کرنا ہے کہ جو اہل ہو. میں جس ہم جس گھر سے وابستہ ہیں, میں تو بعض اوقات کہتا ہوں, تکرار کر رہا ہوں اور اس بات کی تکرار پہ مجھے لطف آتا ہے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں نا, جتنا اللہ کا شکر کریں کم ہے کہ سالم ترین شخصیات سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں. ہم پر یہ سوال تو ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی گئی تھی, تمہیں ایسے جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا گیا تھا, تم نے کتنا استفادہ کیا ان سے, مگر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم وہاں غلط بیٹھے تھے یا صحیح بیٹھے تھے. بیٹھے صحیح تھے. جس گھر کا بچہ بچہ لوہے محفوظ کی تلاوت کرتا ہو, جس گھر کی کنیز 20 سال تک قرآن سے بات کرتی ہو, جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر شاگرد اور کنیز ہو جائے, اور وہ 1-2 سال نہیں جس کی زندگی میں 20 سال کا دورانیہ گزرے کہ جب بھی بات کرے تو قرآن کی آیت پڑھ کر بات کرے, یہ گھرانہ 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا, سرکار دو جہاں کے آغوش مبارک میں تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا حلقہ ہے, ایک عربی, ایک بدو, ایک غیر مسلم, ایک مشرک گوہ کا شکار کر کے, گوہ جو بڑی ایک چھپکلی کی طرح سے ہوتی ہے, ایک بہت بڑا جانور ہے جو معمولاً صحراؤں میں ہوتا ہے, وہ زمانے میں اسے کھایا جاتا تھا, یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسے کھاتے تھے, اس کا گوہ کھاتے تھے, اس کا شکار کر کے بڑی بھی گوہ اس کی دنگ پکڑ کر ہاتھ میں اٹھائے, سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اے ابا کے بیٹے, تم نے اعلان نبوت کیا ہے, دلیل نبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت نے فرمایا, تیرے لیے 2 دلیلیں میرے پاس ہیں, میں بیٹھا ہے یہی دلیل نبوت, اور دوسرا, تیری ہاتھ میں جو گو ہے یہ پکار کے بتائے کہ میں کون ہوں. تو اس سے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا, تو مردہ یہ کیا بتائے گی؟ حضرت نے آواز دیکھا, یا دب من انتا من انا, اے گو تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو مردہ گو تھی نا, جس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی, جو شاید کئی گھنٹوں سے مری ہوئی تھی, ایک مرتبہ اس نے اپنی گردن ہلانا شروع کی, پھڑکنا شروع کیا اس نے, نبی پکارے رب اور وہ جواب نہ دے, نبی مکرم اس سے مخاطب ہو اور وہ جواب نہ دے, مجال, اور ولایت تقی کسے کہا جاتا ہے. میرے مولانا نے فرمایا, یادب بتا تو کون ہے, اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے ایک مرتبہ حرکت کرنا شروع کی اور گلی فصیح عربی میں بولی, گوف کی عربی میں بولی, آواز دے کر کہا, انت رسول رب العالمین, آپ العالمین کے رب کے رسول ہیں, اور اے میں آپ کا ایک چاہنے والی, ایک آپ کی, آپ سے آپ کا کلمہ پڑھنے والی اللہ کی مخلوق زب ہوں. میرے مولا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا, بیٹا حسن بتاؤ, اس کے سوالات کے جوابات دو. کہنے لگا, میں اس بچے سے کیا بات کروں, 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن کا. کہنے لگا, میں اس بچے سے کیا بات کروں؟ میرے مولا حسن بے ساختہ بولے, سل فقیہن لا سبیا, تو بچے سے بات نہیں کرے گا, پوچھے گا تو کسی فقیہ ہی سے پوچھے گا. میں تیرے سامنے ایک فقیہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے بات کر. کہنے لگا, میں تم سے سوال کروں گا تو تم اس سن و سال نہیں ہو کہ تم سے سوال کیا جائے. حضرت نے فرمایا, تو کل رات کو قبیلے میں بیتوتہ کی حالت میں تھا, ایام پذیر تھا, پھر جب وہاں سے نکلا تو تجھے رخصت کرنے کے لیے کچھ لوگ کچھ دور تک آئے, ان میں ایک خاتون بھی تھی, اور اس نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تو مدینے پہنچے تو وہاں ایک شخص نے نبوت کیا ہے, اس سے سوال کرنا, اس سے دلیل نبوت مانگنا. تو نے کہا کہ میں ان سے ملوں گا, میں ان سے ملنا نہیں چاہتا, تو نے میرے نانا نبی کے لیے کچھ نامناسب جملے کہے, ان میں یہ جملہ تو نے کہا, یہ جملہ کہا. ایک مرتبہ جب سارے رستے کے حال سننے لگا تو کہنے لگا, میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ہی دلیل نبوت ہے. سوالات کے بعد جب وہ کہنے لگا کہ میں سوال کرنے سے تھک نہیں ہوں اور آپ دینے سے تھک نہیں رہے, حضرت کا بڑا حسین جملہ مولا امام حسن کا, 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن مجتبی, فرماتے ہیں, انا بحر العلم, میں علم کا سمندر ہوں, अल्लज़ी ला तक्सिहुद दवाई, एक ऐसा समंदर है इल्म हो जिसे डोलों से खाली नहीं किया जा सकता। तलवार पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये घराना जिन्होंने सलूनी का दावा किया, जिन्होंने हर इल्म का उन्वान गोया ऐलान के जो चाहो पूछ लो इनसे, ये जवाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए कुरान मजीद की एक आयत में किताब मकनून का जिक्र है और किताब मकनून की सिफत यह है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। किताब मकनून वो है कि जिसे सिवाय साहिबान तहारत के कोई मस कर सकता। ये साहिबान तहारत यही घराना है कि किताब मकनून तक पहुंच सकते हैं, जो जानते हैं कि किताब मकनून हकीकत कुरानिया का है। नबी मुकर्रम की रहलत के बाद कुरान की जमावरी का जब मरहला आया तो मौलाए कायनात ने जब जो हालात थे, जो सी हालात थे, जो मामलात थे, उसमें मौलाए कायनात अपने घर से बाहर नहीं निकले तो पूछा गया कि या अली आप क्या बयात नहीं करना चाहते? तो हजरत ने फरमाया मैंने कसम खाई है जब तक मैं कुरान को तंजील के मुताबिक जमा नहीं कर लूंगा, जो नबी मुकर्रम ने मुझे तंजील के मुताबिक कुरान की आयात बताई हैं, उस वक्त तक मैं अपनी ये रिदा अपनी आबा मैंने कही है कि मैं अपने शाने पे नहीं रखूंगा इल्ला नमाज वाजिब की, सिर्फ नमाज वाजिब के कांधे पर अपने शाने पे आबा रखूंगा, उसके अलावा मैं आबा नहीं ओढ़ूंगा। ये तहजीब, इस्लामी तहजीब और अहले बैत की सीरत का और उस वक्त के माहौल का तकाजा था कि जो लिबास होता है उसके बगैर बाहर ना निकलना, गोया अपने आप को आना पाना और बाहर निकलने के तकाजे थे, किसी से मिलने के आदाब होते थे। बच्चे कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ भी कुछ आदाब का ख्याल रखा जाता था और आहिस्ता आहिस्ता तहजीबें तब्दील हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आदाब और रिवाज और रसूमात तब्दील हो रहे हैं। बल्कि जो हालात इस वक्त आलमी सतह पर हैं इस वबा के उन्वान से, ये वबा भी हमें आलमी तहजीब की तब्दीली की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। नया दौर शुरू होगा, नए मात होंगे, कुछ चीज़ों से इंसान को दूर किया जा रहा है, कुछ मनफी चीज़ों से दूर किया जाना तो काबिले तारीफ होगा, लेकिन कुछ मुसबत चीज़ों से भी दूर होने का अंदेशा है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस वबा से आलमी सतह पर जो भी इंसान मुतासर हैं उन सबको शिफा अता फरमाए और ख़ास तौर पर ये दुआ भी इन अय्याम में करें, अमीरुल मोमिनीन की शहादत के अय्याम है, कि हम इस वबा से मुकाबला करने की जहाँ बदनी सलाहियतों को तलाश कर रहे हैं वहाँ तहजीबी और रूही सलाहियतें भी हमारे अंदर महफूज रहें और हम इन सलाहियतों के हामिल रहें। एक सलवा दिया करेंगे मोहम्मद वाला। तो सवाल होना है और सवाल किससे होना चाहिए, सवाल पूछने की क्या आदाब तहजीब हैं और सवाल पूछने का रिवाज जो हमारे माशरे में कम है उसे पढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल हम सब मसूल हैं, हम सब जिम्मेदार हैं और जब मसूल और जिम्मेदार हैं तो फिर हमसे पूछा भी जाएगा और हमें जवाब भी देना पड़ेगा। अब इस दुनिया में तो जवाब जैसा दिया जा सकता है और दिया जा रहा होता है, लेकिन एक ऐसा मौका आएगा कि जब जवाब भी दिया जाएगा जो जवाब होगा, कयामत में आवाज दी जाएगी वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसूलून, रुको इन्हें, मसूल हैं, इनसे पूछा जाएगा। और फिर जब पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने अपने एक शागिर्द को बुलाकर सवाल किया कि हमने सुना है कि तुमने इस आयत की तफसीर ये की है कि कयामत में अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें रिज्क दिया, मैंने तुम्हें सालिम हवा दी, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, ये सब कुछ पूछा जाएगा? कहने लगा जी हाँ, मैंने इस आयत से यही समझा है। हजरत ने फरमाया यहाँ नईम का लफ्ज है, यहाँ अल्लाह नेमत उमा के बारे में बात कर रहा है, यहाँ एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके बारे में सवाल होना है और करीम के लिए ये रवा ही नहीं है कि वो अपने दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों को खाना खिलाकर ये कहे कि मैंने तुम्हें कितना क्या खिला दिया है। करीम की करामत का तकाजा यह है कि वो मादी चीजों का सवाल नहीं करेगा। कोई एक ऐसी अजीम नेमत है जो तमाम नेमतों पर हाकिम है। फरमाया ربنا احد، صلوات پڑھیں محمد وال. ہم اہل بیت کی محبت ہے جس کا قیامت میں سوال کیا جائے گا. یہ نعمت عظمیٰ نعیم حب اہل بیت کو کہا جاتا ہے. اور عزیزان گرامی، جب یہ طے ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہونا ہے نعمت عظمیٰ کا، تو پھر اس نعمت عظمیٰ کے باب میں تیاری بھی اتنی ہی چاہیے کہ سوال کا جواب بھی انسان اچھا دے پائے. مولا کائنات کے فضائل کے بیان کا سبب کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم عالی کے فضائل بیان کریں؟ کیوں مولا کائنات کے فضائل کا بیان لازم ہے؟ کیوں ہر مجلس میں علی کا ذکر ہونا چاہیے؟ کیوں ہر جگہ ان پہلوؤں کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے کہ جو پہلو خفتہ ہیں اور جن پہلوؤں کی طرف توجہ ہے؟ میں پھر اپنے سوال کو دہرا رہا ہوں کہ مولا علی کے فضائل کے بیان کی علت کیا ہے؟ بیان فضائل علی ابی طالب کی علت کیا ہے؟ سب سے پہلی علت عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیے معرفت کی کمی عشق کی کمی کا سبب ہوا کرتی ہے. علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد محبت شدید، اور محبت شدید کے بعد عشق. یعنی عشق محبت شدید سے بھی ایک درجہ آگے کا مرحلہ ہے. محبت کے لیے کہا ہے کہ یوما و یعصم، جب کوئی کسی محبت کرتا ہے تو وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، اسے سوائے محبوب کے کوئی نظر نہیں آتا، باقی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے. اسے سوائے محبوب کے کوئی سنائی نہیں دیتا، باقی چیزوں سے وہ بہرا ہو جاتا ہے. یہ تو محبت ہے. اور محبت جب شدید ہو جائے تو چاہوں گا، جب محبت شدید ہو جائے تو پھر یہ عشق کہلاتی ہے. امیر المومنین سے عشق کی منزل تک پہنچنا ہے. علی شاید بعد از خدا و نبی واحد ذات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا کی ذات بعد از خدا و نبی واحد ذات ہے کہ جو عشق کرنے کے قابل ہے. جسے عشق کیا گیا ہے، جسے عشق کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ عاشق جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو معشوق اور عاشق کی ذات دو ہی رہتی بلکہ ایک ہو جاتی ہے. میں اور لفظ بہتر کروں کہ صفت و موصوف دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی موصوف صفت ہو جاتی ہے اور صفت موصوف ہو جاتا ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ زیدن عادلن، زید عادل ہے جی، تو یہ گویا زید ہی عدل ہے اور عدل ہی زید ہے. اب یہ عدل کی صفت زید کی صفت ذات بن جائے تو پھر اس زیدن عادلن نہیں کہے گا، زیدن عدلن. زید خود عدل ہے، زید خود علم ہے. مولا فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کو اگر پہچاننا ہے تو ہم اہل بیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت یعنی علم، علم یعنی اہل بیت. ان کا مسکرا بھی علم ہے، ان کا کسی سے خفا ہونا بھی علم ہے، ان کا گلے لگانا بھی علم ہے، ان کا نفرت کرنا بھی علم ہے. یہ کسی کو علیہ السلام کہہ دیں تو وہ سلمان ہو جائے، کسی کو لعنت اللہ علیہ کہہ دیں تو وہ دوزخی ہو جائے. یعنی یہ اب عنوان قرار دیں گے، یہ بتائیں گے کہ کون کس درجے کا انسان ہے. مولا علی سے عشق، علی سے عشق کا چاہوں گا عزیزان گرامی. معرفت علم سے علم سے پہلے علم، علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد حب شدید، حب شدید کے بعد عشق. عشق اگر علی سے معاشرے میں کم ہے، ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں کم ہے، کون کم مانتا ہے، کون ہے جو کون سا مسلمان ہوگا جو علی سے عشق نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں، عشق بہت مشکل چیز ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ ہمیں کرنا چاہیے. इश्क अली का दावा अगर कोई करे तो उसे मालिक अश्तर कहते हैं या सलमान फारसी कहते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो एक मुंह तारे मुंह के बराबर भी, एक बाल बराबर भी अली से इनहराफ ना करे वो है आशिक अली। एक अजीब हदीस है जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। सरकार दो जहां ने चार सहाबा के नाम लिए कि जिन्हें जिनकी मोहब्बत करने का मुझे हुक्म दिया गया कि मैं उनसे मोहब्बत करूं, उनमें उन्होंने हजरत अम्मार यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम नहीं लिया। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह फल अम्मार, अम्मार का आपने नाम नहीं लिया। तो फरमाया जाजा जीजतन फरजा इलैह, अम्मार ने एक दिन एक लम्हे के लिए अली पे शक करना है और फिर पलट आएगा, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। यानी अगर कोई अली के वजूद पर एक लम्हा भी शक करे तो वो उस दर्जे पर नहीं है जिस दर्जे पर वो है जो कभी शक ना करता हो। ये है वो इश्क की कैफियत कि जिनमें हजरत सलमान फारसी का नाम है। ये बड़ी हसीन मारिफत की वादी है जिसमें मैं इस वक्त आपको अपने साथ रखे हूं। इश्क, इश्क अली की कमी अगर माशरे में है तो वो मारिफत की कमी की वजह से है। और कैसे मुमकिन है, मैं अभी इस वक्त जो शख्सियात तशरीफ फरमा हैं और जो देख रहे हैं हमें पूरी दुनिया में, मैं उनमें ना जाने कौन कौन बैठा हमें सुन रहा हो और कौन कौन हमें देख रहा हो, मैं बेअदबी तो वैसे ही नहीं कर सकता, बेअदबी ना हो जाए, लेकिन अजीजा ने गिरामी इश्क अली का उनवान बहुत मुश्किल है। वाकई इश्क अली, इश्क अली का उनवान तो उस वक्त करार दिया जा सकता है जब आशिक और माशूक दो ना रहें, अली को पुकारें तो वो आ जाएं, उन्हें पुकारें तो अली आ जाए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कैफियत जब तक इश्क के बाब में नहीं होगी वो आशिक नहीं कहला सकेगा। कैसे मुमकिन है कि अली को अदल से प्यार हो और अली का चाहने वाला अदल को ना पसंद करता हो? कैसे मुमकिन है कि अली इब्ने अबी तालिब का वजूद ही इल्म हो और अली का चाहने वाला इल्म से दूर हो? फिर इश्क तो नहीं है। कैसे मुमकिन है कि जुल्म से नफरत अली की हो और अली जुल्म से नफरत करते हो और अली का चाहने वाला जुल्म से नफरत ना करता हो? तो इसका मतलब यह है कि इश्क नहीं है। हां मैं मोहब्बत का भी इनकार नहीं करूंगा, वो मोहब्बत रकीक और खफीफ ही सही, मगर मोहब्बत का हम इनकार नहीं कर सकते। मोहब्बत है, रगबत है, उस तरफ रुख है, अली की तरफ रुख हम सबका है। किसी का शदीद है, किसी का शिद्दत में कमी है, किसी के यहां रिक्त है, किसी के यहां खिफत है, रुख सबका उसी तरफ है। कोई आखिरी लाइन की आखिर में जाके खड़ा है, कोई उस सफ के आगे आके खड़ा है, हैं सब एक ही सफ में। लिहाजा ये कहना इस मेंबर से बहुत मुश्किल है कि जिसको इश्क नहीं है उसको गोया उसकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, उसकी हैसियत है, मोहब्बत उसे है, मगर इस मोहब्बत में शिद्दत को लेकर आना है। ये मोहब्बत जब शदीद हो जाएगी तो फिर इश्क का मरहला बनेगा। यानी क्या हम में से कोई नहीं चाहता कि हम मालिक अश्तर जैसे बने? क्या हम में से कोई नहीं चाहता कि हम सलमान फारसी के जैसे बने? भाई मैं मासूम के बनने की बात तो नहीं कर रहा ना कि जो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जी हजरत सलमान फारसी अल्लाह अकबर, इश्क अली से मुनव्वर ममलूक मुअत्तर वजूद, इश्क अली से मुअत्तर वजूद। सन्नो साल बहुत ज्यादा है हजरत सलमान का। सलमान फारसी हैं या सलमान मोहम्मदी हैं? सरकार ने इनका नाम सलमान फारसी के बाद फरमाया सलमान फारसी नहीं कहो आज के बाद, तुम अपने आप को सलमान मोहम्मदी कहो। तशरीफ फरमाए कुछ अहबाब के साथ, तय किया गया कि सलमान का शजरा मालूम करें कि इनके दादा इनके पड़दादा कौन है। तो एक एक ने अपना अपना हसब नसब बयान करना शुरू किया। हसब पर तो मैं बात नहीं कर रहा, नसब की बात कर रहा था। एक ने अपने अपना नसब बयान करना शुरू किया तो आबा अजदाद के नाम लेते लेते अब एक मरतबा सलमान के बराबर वाले ने जब बता दिया तो अब मरहला हजरत सलमान का था। तो आवाज आई, सलमान बताओ तुम्हारा नसब क्या है? तो बेसाख्ता फरमाया, मेरा नाम सलमान है, मेरा बाप इस्लाम है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। और अपने इस्लाम के ऐलान से पहले देखें, ये हजरत सलमान फारसी हों, ये हस्तियां, ये मकामात रखने वाली शख्सियात, ये पैदाइश और एतबार से ये मुहिद लोग करते थे, इनकी इनका मकाम बहुत बुलंद है। हजरत सलमान फारसी के लिए तो बात भी जरा मुख्तलिफ है। मैं अभी करने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में कि मासूम का जनाजा सिवाय मासूम के कोई गुस्ल कफन नहीं दे सकता। मासूम का गुस्ल कफन मासूम ही को देना होता है, चाहे वो मौजूद से पहुंचना पड़े। 14 मासूम के बाद, 14 मासूमीन के बाद अगर सहाबाए किराम में कोई साबी है तो वो सलमान ही है कि जिनको गुस्ल कफन देने के लिए मौजदे से अली पहुंचे। उनके अलावा किसी और को यह अजमत हासिल नहीं है। जब पहुंचे हैं ना मदीना मुनव्वरा सरकार दो जहां की तलाश में, तो उन्हें एक बुजुर्ग ने बता दिया था कि सलमान जो आखिरी जमाने का नबी है उसकी 3 सिफतें हैं, उसे 3 निशानियों से पहचान सकते हो। एक निशानी तो यह है कि वो सदका नहीं खाएगा, दूसरी निशानी उसकी यह है कि जब वो बाहर निकला और सूरज और दिन निकला हुआ होगा तो बादल उस पर साया करेगा, यानी बादल उसके और सूरज के दरमियान आ जाएगा, उस पर साया होगा। और तीसरी निशानी यह कि उसकी शाने पर मोहर नबूत लगी होगी। सलमान फारसी ने एक दिन अपने जिसके बाग में काम करते थे, उसने मजदूरी में इनको खजूरों का टोकरा दिया कि ये तुम्हारी मजदूरी है। अब होता है कि उसे जाके ये फरोख्त कर दें, कुछ उसके बस चीजें ले लें। पहले जिन्स के बदले में ही जिन्स ली जाती थी, खजूर दे देंगे, आटा ले लेंगे, खजूर दे देंगे, मिसाल चावल ले लेंगे। अभी अपने मजदूरी के जिन्स लेकर जब बाहर निकले तो इनको ख्याल आया कि ये मैं फरोख्त करके नबी की खिदमत में पहुंचूं। कि एक मरतबा इनके मालिक ने इन्हें आवाज देकर कहा कि एक टोकरा सदके का भी है वो लेते जाओ और ये बाजार में और शहर में फुकरा में तकसीम कर देना। सलमान ने अपना खजूरों का टोकरा फरोख्त किया और जो सदके का टोकरा था वो लेकर पहुंचे मस्जिद में। एक जानेब मौला अली तशरीफ फरमाए हैं, एक जानेब हजरत हमजा तशरीफ फरमाए, या अवाइल इस्लाम की बात है यानी अवाइल हिजरत की बात है, हजरत हमजा तशरीफ फरमाए, बीच में सरकार बैठे हैं। सदके की खजूरों का टोकरा आगे रख के कहा कि तनावुल फरमाए, सदका है। तो ना अली ने खाया, ना हजरत हमजा ने खाया, ना सरकार दो जहां ने खाया। तो सलमान ये कहते हुए उठे कि आज कैसे तय करूं कि इनमें नबी कौन है। कह ये पूरा घराना सदका नहीं खाता, ये पूरा घराना सदका नहीं खाता। एक मरतबा देखा कि बादल साया किए हुए हैं, मगर अकेले तो जा नहीं रहे, कभी निकलते हैं तो अली साथ होते हैं, कभी निकलते हैं तो हमजा साथ होते हैं, कभी जाफर तैयार साथ होते हैं, अकेले तो कभी निकलते नहीं। तो ये कैसे तय करें कि इनमें कौन सा नबी है? अब एक ही निशानी रह गई थी मोहर नबूत की। तो एक सहाबी का जनाजा था, सरकार जनाजे में शामिल थे, बार बार अपनी कमली को सीधा कर रहे थे और आपका शाना बार बार कमली से खाली हो रहा था, और सलमान चाहते थे कि इसी तरह मोहर नबूत को देख लें। कुछ फासले पर थे कि जब चंद मरतबा सलमान ने कोशिश कर ली और मोहर नबूत नजर नहीं आई तो सरकार ने मोड़कर देखा और कहा, सलमान करीब आओ, हम इस मोहर की ज्यारत में खुद करवा देते हैं। ये सलमान फारसी, ये इश्क अली से सरशार वजूद। मैं आज की इस मजलिस में इस बात पर अपनी बात और अपने मजमून को मुकम्मल करूंगा कि सलमान फारसी इश्क अली से सरशार वजूद, आशिक अली इब्न अबी तालिब, आशिक अली इब्न अबी तालिब। जब मदाइन के गवर्नर के तौर पर तशरीफ फरमा हो रहे थे तो मौला से रुखसत होते वक्त इनका दिल गोया ऐसा मलूल था कि मौला ने इनको एक बशारत दी। हजरत ने फरमाया कि सलमान जब कभी बीमार पड़ो तो कब्रिस्तान जाकर मुर्दों को सलाम करना, अगर कोई मुर्दा तुम्हें जवाब दे दे और तुमसे बात करे तो समझना इस बीमारी में तुम रहलत कर जाओगे, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। और सलमान अपने साथियों से कह देना कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल कफन ना दिया जाए बल्कि अली का इंतजार किया जाए, मैं खुद तुम्हें गुस्ल कफन देने के लिए मदाइन पहुंचूंगा, मैं अपने हाथों से तुम्हें कब्र के हवाले करूंगा। मदाइन में सलमान कई साल रहे और कई मरतबा बीमार हुए, मगर हर मरतबा बीमार होने पर फौरन कब्रिस्तान चले जाते थे। 300 साल से ज्यादा की उम्र, 300 साल से ज्यादा की उम्र थी हजरत सलमान की, 3 सदियों से ज्यादा उम्र थी हजरत सलमान की। तो चले जाते थे कब्रिस्तान और जाकर मुर्दों से बात करते, जवाब नहीं आता था तो कहते थे कि नहीं, ये इस बीमारी में मैं ठीक हो जाऊं। इस कैफियत को भी अहले दिक्कत से मैं तवज्जो चाहूंगा सामईन नाजरीन हाजरीन से कि ये जो कैफियत है ना, ये इल्म बलाया व मनाया का इल्म है। इल्म बलाया व मनाया क्या है? इल्म बलाया, बलाएं आने वाली हैं, आइंदा क्या होगा, कैसे लोग मरेंगे, कौन किस तरह से मरेगा, ये इल्म इल्म गैब की एक किस्म है। अच्छा, फिर कोई उलझन ना हो जाए, इल्म गैब जब हम कहते हैं ना कि ये इल्म गैब क्या उनवान है या इल्म गैब की किस्म है, सरकार को इल्म गैब था, मौला अली को इल्म गैब था या नहीं, इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी और को हो सकता है या नहीं, ये बहुत ज्यादा उलझन की बात नहीं है, बहुत सीधी सादी सामने की बात है। इल्म जाती तौर पर अल्लाह की सिफत है और अल्लाह के अलावा हर एक को अल्लाह ने अता किया है, तो चीज वो अल्लाह की है। अल गैब लिल्लाह, गैब अल्लाह के लिए है मगर वो जिसे चाहे अता कर दे। अल कुदरत लिल्लाह, मगर वो जिसे चाहे कुदरत अता कर दे। अल हयात लिल्लाह, जिंदगी अल्लाह ही के लिए, हय कयूम तो सिर्फ अल्लाह ही है मगर जिसे चाहे वो जिंदगी अता कर दे। ये जातन अल्लाह की चीजें हैं, अल्लाह की सिफात हैं, मगर अल्लाह इर्तजा और मुर्तजा बंदों को अता करता है। वो जो इर्तजा और मुर्तजा और मुस्तफा बंदे हैं उन्हें अल्लाह अता करता है। एक जगह हजरत अली ने जब 27 मुश्किल तरीन सवालात के जवाब दे दिए तो पूछने वाले ने सवाल किया कि क्या आपके पास इल्म गैब है, तो मौला नहजुल बलागा का फरमान है, नहजुल बलागा में मौजूद फरमान है, हजरत फरमाए नहीं, मैं आलिम गैब नहीं हूं, साहिब गैब से इस्तफादा करता हूं। तो ये जो बताया गया हजरत सलमान फारसी को कि तुम्हारी मौत जब करीब होगी, जिस बीमारी में तुम्हारी रिदत होगी करेंगे, तुम कब्रिस्तान जाओगे, तुम्हें जनाजों से जवाब आएगा, मुर्दों से जवाब आएगा, तुम गुफ्तगू करोगे उनसे, समझ लेना कि तुम्हारे रहलत करीब है। सलमान कई मरतबा इस मरहल से गुजरे मगर मुतमईन रहे, इसलिए कि मुर्दे बात नहीं कर रहे कि इस बीमारी में तुम्हें जाना नहीं है। आखिर एक ऐसी बीमारी भी कि जिसके आने पर सलमान कब्रिस्तान पहुंचे और जब उन्होंने सलाम किया तो कब्रों से जवाब आना शुरू हुआ। एक रिवायत में यह भी है कि सलमान ने साहिब कब्र से बड़ी दिल गुफ्तगू भी की और फिर वापस आकर अपने अहबाब से कहा कि मैं इन्हीं दिनों में इसी बीमारी में इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो खबरदार मेरे जनाजे को गुस्ल कफन न देना और इंतजार करना, मेरे मौला अली मुझे गुस्ल कफन देने के लिए आएंगे, अपने हाथों से मुझे दफनाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सलमान फारसी का इंतकाल हो गया। सलमान के जनाजे पर अहले मदाइन मुंतजर हैं कि अली कब आते हैं। अभी कुछ देर गुजरी है, कुछ साआतें गुजरी हैं कि मौलाए किया कायनात की आमद हुई, हजरत एजाज से पहुंचे हैं वहां के जहां सलमान का जनाजा रखा था, अपने हाथ से गुस्लो कफन दिया और गुस्लो कफन देने के बाद सलमान के कफन पे 4 मिसरे लिखे। वो मौलाए कायनात के 4 मिसरे जो सलमान फारसी के कफन पे मौला ने लिखे हैं, वो मैं इंतहाई मोहतरम और मुबारक सामईन हाजरीन को सुनाना चाहूंगा। अपने हाथ से अली मौला ने कफन पे 4 मिसरे लिखे हैं, ये गोया अली के ही शेर हैं, क्योंकि हमारे सामने तो मौला के जरिए से वो पहुंचे हैं। फरमाते हैं, वफत तो अलल करीम बगैर सनाते वल कल्ब सलीमी, मैं आया हूं करीम की बारगाह में ज़ादे राह लिए बगैर, वफत तो हाजिर हुआ हूं अलल करीम बगैर ज़ादिन मिन अल हसनात वल कल्ब सलीमी, मैं करीम की बारगाह में ज़ादे दान खाली है, हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, करीम की बारगाह में ज़ादे राह के बगैर आया हूं। वह हम लो ज़ादे अब हो कुल शैइन, हां हमले ज़ादे राह को लेकर जाना, रोटियां अपने साथ किसी के दस्तरखान पर ले जाकर बैठना, किसी करीम के दस्तरखान पर अपने घर से लो रोटियां ले जाकर बैठकर खाना, अकबहुज़्ज़ा हमलुज़्ज़ादे अकबहु कुल्लुशन इदा कानल वफूदो अल करीमी, अगर आने वाले करीम के दस्तरखान पर आ रहे हों तो ये करीम की तौहीन के रोटियां घर से लेकर आए। हम खाली हाथ या अल्लाह तेरी बारगाह में आए हैं, और इसलिए खाली हाथ आए हैं, कुछ भी नहीं लेकर आए। हमारी नमाजें हम नहीं लाए, हमारे रोजे रख लिए थे मगर इस काबिल नहीं है कि यहां रखे जाएं। हमने बड़े काम किए मगर वो तेरी बारगाह में हाजिरी के लिए पेश करने के लिए इस काबिल नहीं है पेश करें। हम करीम के दस्तरखान खाली हाथ ही था ना, हमें करीम के दस्तरखान पे तो हम अपने घर से रोटियां तो नहीं लेकर आए थे, हम खाली हाथ ही आते ना इस बात में, और अगर हम रोटियां घर से ले आते तो ये करीम की तौहीन होती। और फरमाया सलमान, सलमान जब तुम उस आलम में कदम रखो तो मेरा सलाम फातिमा जहरा को कह देना, मेरा सलाम फातिमा जहरा को कह देना। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह अकबर फजाइल के बाब में मैं कुछ देर और चाहूंगा कि आपको अपने साथ रखूं। एक सबब तो मौला अली से इश्क की कमी, मौला अली की मारिफत की कमी की वजह से है। क्या करें कि अली से इश्क बढ़े, मेरा इश्क बढ़े, आपका इश्क बढ़े, क्या करें कि अली का इश्क बढ़े। अली का इश्क बढ़े जब कि जब अली की मारिफत बढ़ेगी, और अली की मारिफत बढ़ेगी जब कि जब अली से मुतालिक, मौला से मुतालिक इल्म बढ़ेगा। अहदीस, आयात, आयात की तफसीर, वाकयात, मोजजात, उनकी अजमत का बयान, उनकी रफत और बुलंदी का बयान, जब ये इल्म की सूरत में नशर होगा, बयान, तो फिर अली की मारिफत बढ़ेगी, और जब अली की मारिफत बढ़ेगी तो अली से इश्क बढ़ेगा। तो हमें क्योंकि इश्क अली तक माशरे को ले जाना है, एक सबब तो फजाइल अली के बयान का ये है। दूसरा सबब मोहतरम सुनने वालों, मौला के फजाइल के का, ये दौर इमाम मेहदी अजल्लाह तआला फरजहु शरीफ का दौर है, और हम इमाम मेहदी के तारीख से नाशना है। 5 साल के सन्नो साल में 255 हिजरी में आप गैबत सुगरा में तशरीफ फरमा हुए, और 5 साल के बाद आप 70 साल के बाद आप गैबत कुबरा में तशरीफ फरमा है, और दसियों सदियां गुजर चुकी हैं, बल्कि कहूं कि 1150 साल गुजर चुके हैं। हम हजरत की तारीख से नाशना है, हमें नहीं पता कि इमाम की सीरत क्या है, हमें नहीं मालूम कि इमाम के का मिजाज क्या है, हमें नहीं मालूम कि इमाम के इल्म की कैफियत क्या है, हमें नहीं मालूम कि इमाम की शजाअत की कैफियत क्या है, इमाम के सखावत के जलवे क्या हैं, इमाम की रियाजत के जलवे क्या हैं, इमाम की इमामत के जलवे क्या हैं। हमारे सामने इमाम मेहदी नहीं है, यानी हम हैं तो पहचानते नहीं हैं, उनकी सीरत, उनकी तारीख, उनके वाकयात हमारे सामने नहीं है। और मौला अली का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा मेहदी हमारे जद अली से मुशाबे है, हमारे मेहदी की शबाहत सबसे ज्यादा किसी से है तो वो हमारे जद अली से है। यानी अगर आप मुझे देखना है कि अदल मेहदी क्या है तो मैं देख लूं कि अदल अली क्या है, अगर मुझे देखना है कि इल्म मेहदी कैसा है तो देख लूं इल्म अली कैसा है, अगर मैं देखना चाहता हूं कि इबादत इमाम मेहदी कैसी होगी तो देख लूं इबादत अली बिन अबी तालिब कैसी है। तो जितना मैं मौलाए कायनात की सिफात पर गौर करता चला जाऊंगा इतना इमाम मेहदी से आशना होता चला जाऊंगा। और ये दौर जिस इमामत का है वो इमाम मेहदी का दौर है। किसी ने क्या खूब कहा कि आने वाला क्या आके करेगा, ये वही करेगा जो इनके जद अली ने किया है। क्या किया, उठाई है, जान दी है, घर इल्म के फरोख के लिए ऐसा दावा किया है तारीख बशरियत में अदीमुल मिसाल है। सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़दूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तफ़क़दूनी, ये इल्म का एक दरवाजा, अल्लाह अकबर। जनाब नजमुल हसन जाफरी साहब ने मेंबर को क्या खूब सजाया है और हम सबको दरे शहरे इल्म पे ले जाके बिठा दिया है। सलवात पढ़ेंगे आले मोहम्मद कि ये जो दावा सलूनी की वो तो दूसरा सबब इमाम की बयान फजाइल और इमाम की अजमत के बयान का दूसरा सबब यह है। तीसरा सबब भी सुन लीजिए और तीसरा सबब यह है कि आज मैं और आप बड़े आराम से आसानी से हमारे रसाने यहां मौजूद हैं, हमारे टीवी चैनल्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में इस मजलिस को दिखाएंगे। आप एसओपी और आलमी कायदे कवानीन के मुताबिक घरों में मजालिस को सुन रहे हैं और यहां वही अफराद बैठे हैं कि जो फासलों को और उन कायदे कवानीन पर अमल कर सकते हैं और उस पर अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि आज बड़ी आसानी से मैं माइक पर टीवी चैनल पर मौला अली की बात कर रहा हूं। एक मर्तबा अली कहने पर हुलकूम बुरीदा किए गए, एक दफा अली कहने पर सर पर तलवार मारी गई है। कोई एक दफा अगर अली कह देता था तो उसका बाजू काट लिया जाता था। पूछा जाता था कि तुम अली कहना चाहते हो तो हाथ काटा जाएगा और वो तैयार हो जाता था कि हाथ काट दीजिए मगर मैं अली बोलना चाहता हूं। ये जो मौला का जिक्र फजाइल बयान है अजमत मौलाए कायनात, एक दफा अली कहने पर, एक बहुत बड़ा नाम है, मैं किसी उलझन से बचने के लिए नाम नहीं ले रहा, वो हमेशा जब भी नबी मुकर्रम की हदीस सुनाते थे तो कहा रसूलुल्लाह, तो किसी ने कहा जी आपकी विलादत तो दूसरे दौरे हुकूमत और खिलाफत, दूसरे दौरे खिलाफत के अंदर आपकी विलादत हुई, आप तो नबी के जमाने में थे ही नहीं। आप जब भी हदीस सरकार की बयान फरमाते हैं तो कहते हैं कि قال رسول الله, तो आपके और रसूलुल्लाह के दरमियान तो एक या कम से कम दो या कम से कम एक वास्ता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने तो सरकार को देखा नहीं, आप डायरेक्ट नबी से कैसे कौल को नकल कर सकते हैं। तो कहने लगे जो जो बात मैंने अली से सुनी है मुझे यकीन है ये नबी ने कही है। तो उस पूछने वाले ने कहा फिर अली का नाम क्यों नहीं लेते, आप कहे ना कि ये बात मैंने अली से सुनी है। कहने लगे मुझे जान अजीज है। बहुत मुश्किल दौर, और जरा पहले तीन दौरों से और चौथे और पांचवें दौर से जरा आगे आप बढ़े तो 80 साल तक का तो दौर ऐसा था, और आज तक क्या आज हमें ये जलवे नजर नहीं आ रहे होते? बाज इलाकों में मौला का नाम लेना एक जुर्म शुमार होता था, सब वो शत्म होता था मेंबरों से। अली बिन अबी तालिब की मन कसत बयान करने की कोशिश नहीं, एहतमाम और इंतजाम होता था, महफिलें सजाई जाती थी कि अली के खिलाफ कोई बात हो। ऐसे ऐसे नामवर लोगों को मार दिया गया। ये जो आज हमारे पास किताबों की सूरत में अजमत मौलाए कायनात पहुंची है, फजाइल का बाब पहुंचा है, फजाइल पहुंचे हैं, ये कैसे पहुंचे हैं कभी इस पर भी तो गौर किया जाए। इसी हिंदुस्तान में लखनऊ में हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा मीर हामिद हुसैन लखनवी साहेब अबकातुल अनवार, उनका अजीब जुमला मैंने पढ़ा, एक किताब लिखी गई थी 300 सफों की, उसका जवाब देने के लिए 40 जिल्दों में किताब लिख दिया, और मौला की अजमत की किताब, मौला के फजाइल पर मुश्तमिल किताब, उसमें एक जगह बड़ा गोया अपना मर्सिया पढ़ते हुए लिखते हैं कि मैंने इस किताब को लिखने के लिए, मैंने बयान फजाइल अली के लिए, मैंने दिफाए विलायत अली के लिए हर कसो नाकस से जाकर सवाल किया, हर अपने और गैर से जाकर मैंने किताब मांगी। मैं ऐसी ऐसी जगह गया कि जहां जाना मेरे लिए कभी काबिल तसव्वुर नहीं था कि मैं वहां जाकर किताब मांग कर आऊं और उस किताब से अली की फजीलत का एक बाप करार दूं। मैंने विलायत अली के दिफा के लिए यह किताब लिखी है। अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी साहेब अल्लाहु अकबर अल गदीर, साहेब अल गदीर कई महीनों तक किताब खाने में बंद होकर रहे और कसम खाली के उस वक्त तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक के सिर्फ हदीस गदीर पर किताब नहीं लिख लूंगा, और 10 जिल्दों में किताब लिखी है सिर्फ हदीस गदीर पर। दो जिल्दें तो सिर्फ उन शुआरा के ऊपर हैं कि जिन्होंने मैदान गदीर में खड़े होकर मौला अली की मौलाइयत का ऐलान सुनकर मौला की शान में कसीदा कहा था। जब मौला नबी ने ऐलान विलायत अली किया, मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला, तो दो जिल्दें तो सिर्फ उन सहाबा किराम के कसीदे हैं जिन्होंने मैदान गदीर में अली की शान में कसीदे कहे। फिर इस हदीस के रावियों के ऊपर बहस है, फिर इस रिवायत इस हदीस की इस्तखराज पर बहस है। लोगों ने मुसाफतें तय की हैं। शेख सदूक अलैह रहमा तवील मुसाफतें तय करके नेशापुर पहुंचे एक हदीस लेने के लिए कि वो हदीस कहीं जिसने जिन रावियों ने जिन 100 आदमियों ने जिन 200 आदमियों ने इमाम रिजा से सुनी है वो कहीं उनकी रहलत ना हो जाए, उनका इंतकाल ना हो जाए, वो भूल नहीं जाए, उस शहर में रहे हैं। एक हदीस लेने के लिए तुम्हारे शहर में इमाम रिजा आए थे, क्या फरमा के गए? 200 आदमियों से उसकी रिवायत की है, उन आदमियों को रावी के तौर पर लिया है और उस हदीस की सनद को तैयार किया है। ये ऐसे ही नहीं पहुंचाए हम तक। जब ये मुश्किल से पहुंचाए, जब ये जिक्र अली का मुश्किल से पहुंचा है, तो फिर इस जिक्र की जिला और बका के लिए मुझे और आपको भी एहतमाम करने की जरूरत है। और उन एहतमामात में से एक तरीका एहतमाम का यह है कि हालात कैसे ही हों, जमाना चाहे कैसी ही करवटें ले, मगर हर जमाने में उन हालात के मुताबिक यह जिक्र बाकी रहेगा और हम अपने दिलो दिमाग को अली के जिक्र से हमेशा मुअत्तर रखेंगे। हमारी महफिलें, हमारी मजलिसें, हमारे अज़ा खाने, और अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह इस वबा से हमें जल्द से जल्द निजात अता फरमाए। फरमाया, बेटा हसन, आज कौन सा रोजा है? इमाम हसन ने फरमाया, बाबा आज 17वां रोजा है। इमाम हुसैन की तरफ देखकर फरमाया, बेटा हुसैन, ईद में कितने दिन रह गए? इमाम हुसैन ने फरमाया, बाबा 13 दिन बाकी रह गए। एक आह भर के फरमाया, हां, ईद तो वो मनाएगा जो 21 रमजान के बाद जिंदा रहेगा। बाजार से गुजर रहे मेरे मौला, एक शख्स को देखा, एक सहाबी को देखा कि जो पंसारी की दुकान से खिजाब खरीद रहा है। पूछा, तुमने क्या खरीदा है? कहा, मैंने अपनी दाढ़ी को रंगीन करने के लिए, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, इसे रंगीन करने के लिए खिजाब लिया है। हजरत ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखते हुए फरमाया, हाँ, कुछ तो हैं जो दाढ़ी को रंगीन करने के लिए खिजाब खरीद रहे हैं और कोई है जिसकी दाढ़ी उसके सर के खून से रंगीन होगी। ये इशारे हैं जो मौला मुसलसल इस महीने में देते आ रहे हैं। 47 हिजरी का माह मुबारक रमज़ान अली इब्न अबी तालिब की ज़ाहरी हयात का आखिरी रमज़ान, और इस रमज़ान में हर रोज़ कभी यतीम बच्चों को दूध पहुँचाने जाते हैं, कभी फ़कीरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ फ़कीर तो ऐसे हैं जिनके पास रोज़ाना अली दिलदारी के लिए जाते हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, और जब फकीरों के महल्ले में जाते हैं और वो अली इब्न अबी तालिब से कहते हैं, हमारे साथ इफ्तार कर लीजिए, हमारे साथ कुछ खा लीजिए, तो अपनी रोटी खोलकर, अपना रुमाल खोलकर, उसमें से रोटी निकालकर उन फकीरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। एक मरतबा एक फकीर ने कहा कि मौला इसमें से खा लीजिए, हमारा खाना भी खा लीजिए। फरमाया, सदका हम पर हराम है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए बैठता हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि इस माशरे में और फकीर भी हैं। अल्लाह हमें अपना फकीर करार दे, और फिर वहां बैठकर अल्लाह की बारगाह में उन फकीरों को एतमाद देना कि तुम अल्लाह की बारगाह में अपने आप को ले जाया करो, तुमसे अमीर, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। कभी कभी, कभी कहीं और, कभी किसी और मौके पर तफसील से बयान हो कि मौला ने फकीरों को कितना एतमाद अता किया है, नादारों को कितना हौसला दिया है, तो ही दस्तों को अली इब्न अबी तालिब ने कितना बुलंद किया है। गरीब हो जाओ मगर हाथ अपने जैसों के आगे ना फैलाओ, फकीर हो जाओ मगर अपने जैसों के आगे हाथ ना फैलाओ, ये अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी का एक हसीन बाब है। नादारों के साथ तो अली ऐसे रहते हैं कि जैसे उन्हें एक एक ना एक फकीर का तो एक रिवायत का हिस्सा है, वो फकीर कहता है जब अली हमारे साथ आके बैठते हैं तो हमारा दिल करता है हम सारी जिंदगी फकीर रहे, इसलिए कि अली हमारे साथ आके बैठ रहे हैं। मेरे मौला इस महीने में इशारों में रहनुमाई फरमा रहे हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। सत्र वहां अजीजाने गिरामी रोजा इफ्तार करने के लिए, फरमाया बेटा हसन अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कह दो कि आज मैं उसके घर इफ्तार करूंगा। अजादारो बहुत सुना है आपने कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है, बाप भी बेटियों की तरफ बहुत रागिब होते हैं। अब अली इस दुनिया से जाना चाहते हैं, फरमाया मुझे अपनी बेटी के घर इफ्तार करना है। बेटी ने कितनी खुशी मनाई होगी जब खबर पहुंची होगी कि आज बाबा मेरे घर आ रहे हैं, कितना एहतमाम करने की कोशिश की होगी। मुझे तो दिल कहता है कि कभी दौड़ती होंगी कि ये भी इंतजाम कर लूं, वो भी बाबा के लिए तैयार कर लूं, और फिर अपने आप से कहती होंगी कि बाबा तो ये नहीं खाएंगे। दस्तरखान बिछाया, मौला आकर बैठे इफ्तार के लिए जनाब उम्मे कुलसूम ने, तो मौला ने दस्तरखान को देखा और फिर अपनी बेटी के चेहरे को देखकर कहा तुमने अपने बाबा को भुला दिया, तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें रही हैं, कभी इतना बड़ा दस्तरखान तुम्हारे बाबा का रहा, क्या रखा था दस्तरखान पे? मैं सुनने देखने और बैठने वालों से सवाल कर रहा हूं, कितने खाने रखे हुए थे दस्तरखान पर? एक कासे में दूध, एक जर्फ में नमक, एक चौकी रोटी। अली के दस्तरखान पर ये तीन चीजें ही तो रखी थी। फरमाने लगे कभी इतनी चीजें तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे थी? मेरी बीबी ने चाहा कि बढ़ के नमक उठा लें बाबा, रोटी से और दूध से इफ्तार कर लें। फरमाया नहीं उम्मे कुलसुम, दूध उठा लो। अल्लाह, इस कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। मेरे मौला ने जौ की रोटी से और नमक से इफ्तार किया। सारी रात अली इब्ने अबी तालिब हर रात की तरह इबादत में मसरूफ रहे। बीबी फरमाती हैं हर कुछ देर के बाद मुसल्ला इबादत से उठते थे और सहने खाना में आके आसमान पर कुछ ढूंढते थे, तलाश करते थे जैसे आसमान पर कोई चीज तलाश कर रहे हो, और फिर वापस हुजरे में आ जाते थे, फिर मुसल्ले पर इबादत करते थे, फिर सहने खाना में आके आसमान को देखते थे। बीबी फरमाने लगी मुझसे रहा नहीं गया, मैं करीब जाके खड़ी हो गई कि मैं सुनूं बाबा क्या कह रहे हैं, तो बाबा आसमान को देखते हुए कह रहे थे हाज़िही लैलतुल लती क़द वुइदतु, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया, मेरी जिंदगी में ये ऐसी रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। बीबी कहती हैं कि मैं उस वक्त में मुशव्विश हुई, मैंने सोचा कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर मुसल्ले से उठकर जब सहन में आए तो मेरे बाबा अली ने आसमान को देखते हुए एक कलमा पढ़ा, एक जुमला कहा, जिस जुमले ने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, और मैंने बेसाख्ता बाबा से सवाल कर लिया बाबा ये जुमला कैसा है, बाबा ये कलमा कैसा है, और वो जुमला क्या था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा ये कलमा इस्तरजा आप क्यों पढ़ रहे हैं? बाबा ये तो किसी मुसीबत के मौके पर किसी जनाजे को देख के पढ़ा जाता है। फरमाया उम्मे कुलसूम ये जो दिन आने वाला है, ये जो सुबह आने वाली है, ये सुबह मुझे जरबत मारी जाएगी। आमादा हुए मौला, बहुत आपने गिरिया कर लिया, मजलिस मुकम्मल हो जाए, दो जुमले और सुन लीजिए। मौला आमादा हुए, अबा अपने दोष पर ली, अमामा अपने सर पर लिया। आमादा होकर बीबी उम्मे कुलसूम के घर के हुजरे से बाहर निकले, जैसे ही सहन में पहुंचे ना मेरे मौला, तो एक मरतबा मुर्गाबियां जो एक कोना लिए बैठी थी, बीबी के घर में पलने वाली मुर्गाबियां बत्तखें जो एक कोना लिए बैठी थीं, वो पर मारती हुई मौला के सामने आके खड़ी हो गई। मौला ने रास्ता बदला तो फिर उन्होंने मौला के सामने आके खुद को खड़ा किया और आगे खड़ी हो गई। मौला बैठ गए जमीन पर, उनके सर पे हाथ रख के फरमाया उम्मे कुलसूम ये मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मेरा नौहा पढ़ रही है, अगर इन्हें संभाल सको तो रखना वरना इन्हें आजाद कर देना। घर से निकल रहे थे तो जंजीर दर ने कमर में लिपट के रोक लिया, तो बहुत बीबी को देखकर ताज्जुब से फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारी तो दीवारें भी नौहा पड़ रही हैं, तुम्हारा तो पूरा घर मेरे ऊपर गिरिया कर रहा है। तो बीबी ने फरमाया बाबा आज भाई हसन से कहिए वो नमाज पढ़ा लें। तो इमाम ने ताज्जुब से देखा और फरमाया तुम मुझे रोक रही हो उस लम्हे में पहुंचने के लिए जिसका मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था। आजादारों बस मजलिस मुकम्मल हुई, मस्जिद के मेहराब में मेरे मौला ने نماز جماعت کا آغاز کیا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے میں علی نے سر رکھا، ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی جو ہزار درہم میں خرید لی گئی تھی، جسے ہزار درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، اور پھر وہ فرق اقدس سے علی پر آ کر لگی۔ تلوار کا لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونجی، الا قد تہدمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب کو مار دیا، ارکان ہدایت کو گرا دیا، ستون ہدایت کو گرا دیا گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے بولنے سننے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا علی کو ہم راضی فرما۔ یا اللہ اس عزا خانے کی تمام شرکا شخصیات کو اپنے حفظ و امان میں قرار دیں، جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ جو جہاں سے بیٹھ کر مجلس میں شریک تھا اس کی دلی شرعی حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومہ نثار بانو اور مرحومہ خورشید فاطمہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد لا صمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد لا صمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حسين